Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Advaitananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Sanandamanandavane vasantam anandakandam atapapavrindam Varanasinathamanathanatham Sri Vishwanatham Saranam Prapadye Sri Vishwanatham Saranam Prapadye. Param Sadhya, Param Pujya Srotriya Brahmanishtha Swami Prempuri Ji Maharaj ke charno mein Om Namo Narayan karte hue ये जो स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज ने इस उपनिषद का प्रारंभ किया था, परंतु उनकी अकस्मात शारीरिक कुछ दिक्कत होने के कारण अकस्मात ही मेरे पास गिरीश भाई का फोन आया, इसलिए मैं आज स्वामी प्रेमपुरी की और भगवान जगदीश्वर की सेवा करने के लिए यहां उपस्थित हो गया हूं। ईश्वर की कृपा ही ईश्वर की सेवा लेता है। जब ईश्वर की कृपा होती है जीव के ऊपर, तब जीव ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त होता है। तीन कृपा हमारे शास्त्रों में बताई है। सबसे पहले ईश्वर कृपा, दूसरी शास्त्र कृपा और तीसरी आत्म कृपा। ये तीन कृपा जीव के कल्याण कारक है। और कोई सेठों की कृपा हो जाए, नेताओं की कृपा हो जाए, राजाओं की कृपा हो जाए, या डॉक्टरों की कृपा हो जाए, डॉक्टर को भी कहते नहीं, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी कृपा है ना? है, वो भी कृपा ही है, परंतु कुछ अंश तक, शरीर तक। जीव के लिए वो कोई काम की नहीं है। जीव के लिए ये तीन कृपा ही काम कर सकती है। इन तीन कृपा से ही जीव का कल्याण हो सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने ये तीन कृपा का संपादन करना चाहिए। शास्त्र कृपा का अर्थ ही होता है गुरु कृपा, क्योंकि गुरु ही शास्त्र का आपको प्रबोध करा देते हैं, बोध करा देते हैं, और उस शास्त्र के ही प्रबोधन से जीव को अपना बोध होता है। और जब जीव को अपना बोध होता है, उसी को ही ईश्वर का बोध हो सकता है। तो ईश्वर का बोध प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ईश्वर की कृपा आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना ईश्वर का ज्ञान जीव को नहीं हो सकता है। जैसा किसी व्यक्ति की कृपा के बिना उसकी वास्तविकता का बोध नहीं लगता है, हम शरीर को देखकर, चेहरे को देखकर, हाव भाव को देखकर, कर्म को देखकर के जो उस व्यक्ति के प्रति भाव बनाते हैं, वो हमारा भाव यथार्थ नहीं होता है। क्योंकि हम जो दृष्टि के द्वारा इसको हेतु को मान करके साध्य का अनुमान करते हैं, वो अनुमानित ज्ञान जो होता है, अनुमानित ज्ञान जीव को सुखी करने वाला, कल्याण करने वाला नहीं होता है। हमारे शास्त्रों ने ज्ञान भी कई प्रकार के बताए हैं। ईश्वर की कृपा ईश्वर के ज्ञान के लिए आवश्यक है। हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं और हम मानते हैं कि भगवान ऐसे ही है, चार भुजा वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, पीताम्बर धारण किया हुआ है, गला में वैजयंती माला है, सिर में मुकुट है, आदि आदि हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। परमात्मा ये भी है, परंतु ये कल्पित परमात्मा है। क्या है वो कल्पित परमात्मा? है कल्पित परमात्मा सत्य नहीं होता है। हम जो कल्पना करते हैं जगत के विषय में हो, या जगत को जानकर, मानकर, कहकर के जो अनेक कल्पनाएं करते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग पृथ्वी की कल्पना करते हैं, नक्षत्रों की, ज्योतिषी लोग नक्षत्रों की कल्पना करते हैं, आदि आदि जो हमारा जो कल्पना है, वो कल्पना मन से निर्माण होती है और वो मन तक ही रहती है। उस कल्पना से आपको ना तृप्ति मिलेगी, ना शांति मिलेगी, और ना जीव का उद्धार होगा। आदि अनेक प्रकार की जो कल्पनाओं के द्वारा हम अपने को सुख की भी कल्पना करते हैं। जैसा हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, महाराज बड़ा आनंद आया कहते हैं, क्या कहते हो कि नहीं कहते हो? मंदिर में जाते हैं और वहां थोड़ा भगवान का दर्शन करते हैं, उनके सामने शांति से बैठते हैं, कहा कि महाराज आज मैं मंदिर में गया था, भगवान का दर्शन किया, बड़ा आनंद आया। वास्तविक वो आनंद क्या सत्य है? जहां आप कहते हैं कि आनंद आया, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि जो आया है वो जाएगा भी, तो जो आने वाला और जाने वाला होता है वो सत्य होता है क्या? वो सत्य नहीं होता है। ईश्वर की कृपा से या गुरु शास्त्र की कृपा से या आत्म कृपा से जो ज्ञान होता है, जो आनंद आता है, वो कौन सा आनंद है? वो दृश्यानंद नहीं है, अनुमानानंद नहीं है, उपमानानंद नहीं है। शास्त्रों ने जो जो आपको बताया है, या जो वैज्ञानिकों ने कोई विज्ञान की खोज करता है वो भी बड़ा आनंदित होता है, उसका भी आनंद है। परंतु ये आनंद कैसे हैं, नष्ट होने वाले हैं। इस आनंद में नाश है, ये आनंद विकारी भी है, समझेंगे। ये संस्कार आनंद है, संस्कार आनंद, संस्कार हो गया आपके ऊपर उस संस्कार से आपके अंदर एक आनंद निर्माण होता है, उसको संस्कार आनंद कहते हैं। आनंद भी चार प्रकार के हैं। एक आप्यानंद है, प्राप्त होने वाला, भोजन करते हैं कि नहीं, भोजन करते हैं तो आपको तृप्ति होती है, बड़ी शांति मिल गई, बड़ा आनंद आया, आज भोजन किया बड़ा आनंद आया, ये आप्यानंद है। एक संस्कार आनंद है, ये एक विकार आनंद है, और एक चौथा एक आनंदमय, अभी क्या कुछ बुद्धि में कुछ थोड़ा सा ये आ जाती है, मंदता आ जाती है, अवस्था का दोष हो या कुछ, संस्कार्य विकार्य आप्य अप्राप्य, एक प्राप्त आनंद है। ये चार प्रकार के आनंद है। ये जो तीन आनंद है, ये आनंद संस्कारा से जो आनंद है वो संस्कारा का असंस्कार का आनंद भी ठीक नहीं है, जो विकार है विकार से भी जो आनंद होता है, जैसा स्त्री पुरुष को काम विकार आता है और उस काम विकार से फिर उसको क्या मिलता है, आनंद मिलता है, या और कोई वस्तु को हम देखते हैं या करते हैं या जानते हैं तो उससे भी हमें आनंद मिलता है, परंतु ये आनंद भी सत्य नहीं है। कहने का तात्पर्य, इससे जो आनंद मिलता है ईश्वर की कृपा से, ये प्राप्त की ही प्राप्ति का आनंद है। ये आनंद प्राप्त है, आया हुआ नहीं है, समझ लीजिए। ये आनंद जो आपको मिलता है ये प्राप्त आनंद है, उस प्राप्त आनंद का ही आपको प्राप्ति होती है। किससे प्राप्ति होती है, देखो अभी स्वामी जी ने तो आपको इसका प्रारंभ कर दिया था ना, ईशावास्य उपनिषद मंत्र का आरंभ कर दिया था। ये तीन कृपा की हमें अत्यंत आवश्यकता क्यों, ईश्वर की कृपा से क्या होता है और ईश्वर की कृपा क्या है। किसी को धन मिल गया तो कहते महाराज बड़ी भगवान की ईश्वर की कृपा है, धन मिलना ईश्वर की कृपा नहीं है, ना पुत्र होना ईश्वर की कृपा है, ना परीक्षा में पास होना ईश्वर की कृपा है, ना और कोई वस्तु संसार की प्राप्त होना ईश्वर की कृपा मत समझना। क्या इसको ईश्वर की कृपा मत समझना, ये तुम्हारे प्रारब्ध के खेल है, ईश्वर की कृपा इसके लिए नहीं होती है, समझे ना। और इसके लिए ईश्वर कृपा करता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखो। तुम अपनी कल्पना का आरोप ईश्वर पर करके कह रहे हैं, समझे ना, ये तुम्हारे प्रारब्ध की तुम्हारे कर्मों की पूर्व या वर्तमान कर्मों का एक खेल है। ईश्वर इतना नादानी, ईश्वर की कृपा हो जाए और आपको नाशवान वस्तु की प्राप्ति हो जाए, तो ईश्वर का, ईश्वर की कृपा का महत्व क्या रह जाएगा? रह जाएगा हा? ये तो ऐसा ही हो जाएगा जैसा कोई सेठ की कृपा हो गई और सेठ ने आपको आपके लड़की के लिए क्या कर दिया, शादी के लिए खूब पैसा दे दिया या सहयोग कर दिया, तो आप कहते सेठ की बड़ी कृपा होगी। तो क्या ऐसी ही कृपा ईश्वर की है क्या? नहीं, इसको ईश्वर की कृपा मत समझना, ये तुम्हारे प्रारब्ध के संयोग है। ईश्वर इतना नादान नहीं है कि नाशवान वस्तु ईश्वर मिले या ईश्वर प्रसन्न हो जाए और ईश्वर कृपा करे। तो ईश्वर की कृपा आपको हमेशा अविनाशी वस्तु को प्राप्त करा देती है, समझे ना? जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर कृपा की तो अर्जुन का क्या किया? क्या कर दिया? मोह को नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? ईश्वर की कृपा तुम्हारे मोह को नष्ट करती है। मोह को नष्ट करने का मतलब होता है तुम्हारे जीवन में से ममता नष्ट होती है, अर्थात मेरापन नष्ट होता है। ये ध्यान रखो, क्या होता है? मेरापन नष्ट होता है। हाँ, तुम्हारा मेरापन यदि नष्ट हो गया, तुम किसी भी वस्तु को मेरा नहीं कहते हो, तो समझ लो कि ईश्वर की कृपा है। क्या? और ये यदि कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये अमुक मेरा है, तमुक मेरा है, तो ये ईश्वर की कृपा नहीं समझना। ये सीधा सीधा हिसाब है। और दूसरी बात, गुरु क्या करते हैं या शास्त्र क्या करता है? शास्त्र की कृपा किससे समझना चाहिए? बहुत श्लोक बोलना या बहुत कंठस्थ करके बता देना, पाठ करना आदि आदि, क्या ये शास्त्र कृपा कहा जाएगा या गुरु कृपा कहा जाएगा? नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि की कृपा है, समझना। ये भी तुम्हारे प्रारब्ध का ही योग है। बुद्धि सात्विक हो गई तो कंठस्थ आप करने में कोई देर नहीं लगता है। इसको भी शास्त्र या गुरु कृपा नहीं समझना। गुरु कृपा उसको कहा जाता है कि गुरु क्या करते हैं? गुरु तुम्हारे अहंता को मिटाते हैं, समझे ना? इसलिए तो ईश्वर की अपेक्षा से गुरु का महत्व श्रुतियों ने या वेदों ने क्यों श्रेष्ठता बताई है। तत्विज्ञानार्थम गुरु मेवा भी गच्छेत, समझेगा। परमात्मा की कृपा से संसार का मोह, देह का मोह, नाम रूप का, गुण धर्म का, जाति वर्ण का आदि आदि जो मोह है, वो मोह ईश्वर की कृपा से नष्ट होता है। परंतु अहम जो है ईश्वर की कृपा से नहीं मिटता है, ये ध्यान रखो। अहंता जो है, अहंकार जो है तुम्हारा, वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर अहम को नहीं मिटा सकता है। ये अहंकार को मिटाते हैं गुरु या शास्त्र। जब तक आप शास्त्र का चिंतन नहीं करें, शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, आचार्य की शरणागति नहीं करेंगे, आचार्य की कृपा संपादन नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारा अहंकार मिटता नहीं है। अच्छा, आचार्य या शास्त्र तुम्हारे अहंकार को कैसा मिटाता है? कैसा मिटाता है? हाँ, नहीं, ईश्वर का बोध करने का मतलब क्या होता है? तुम्हें अपना बोध करा देते कि तुम क्या हो। क्या? अभी तुम्हें अपना बोध नहीं है, समझना। अभी तुम्हें अपना बोध नहीं है, बोध है परंतु देह का है, नाम का है, रूप का है, जाति वर्ण का है, देश काल का है आदि आदि, परंतु तुम्हें अपना बोध नहीं है। मैं हूं इतना तो बोध है, ये सामान्य बोध है। क्या ये जो बोध है, ये सामान्य बोध है। ये सामान्य बोध तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता है। सामान्य ज्ञान जो है, सामान्य ज्ञान है तो विशेष अज्ञान भी है, और विशेष अज्ञान, सामान्य ज्ञान और विशेष अज्ञान होता हुआ भ्रांति निर्माण होती है। तो ये आपके अंदर भ्रांतियां निर्माण हो रही है। किससे? सामान्य ज्ञान तो आपको प्रत्येक जीव को अपना सामान्य ज्ञान है। मैं हूं इतना तो आपको बोध है, अहम का ये बोध तो है, परंतु ये बोध सामान्य है। और आचार्य बोध कराते हैं तो विशेष बोध कराते हैं, शास्त्र आपको बोध कराता है तो विशेष बोध कराता है। विशेष बोध कराने का मतलब क्या है कि तुम जो अभी हो, क्या तुम्हारे अंदर जो है अभी बोध, वो किसी को मनुष्यपन का है, किसी को जीवपन का है, किसी को सुखकर्ता भोक्तापन का है आदि आदि, ये जो बोध है, ये बोध आपके अत्यंत तुच्छ है, परिच्छिन्न है। और नाल्पे सुखमस्ति, शास्त्र कहता है भूमा वै सुखम नाल्पे सुखमस्ति, अल्पता में सुख नहीं है। भूमा का मतलब होता है व्यापकता में बोध, व्यापकता का बोध। तुम्हें अपना बोध तो है, परंतु शरीर तक ही है। आपका बोध कैसा है? सीमित है, सीमित। तुम कण कण में अपने का अनुभव, अपना अनुभव नहीं करते का करते हो नहीं। जब आपका ही आप कण कण में अनुभव नहीं करोगे तो ईश्वर का कण कण में अनुभव कैसा करोगे? प्रश्न होता है कि नहीं होता है? जो अपने को छोड़कर के ईश्वर का व्यापक कहने से क्या ज्ञान हो गया, कहा जाएगा? कहा कि महाराज मैं तो भगवान को सब जगह देखता हूं। जैसी कहावत है ना, कठवट में गंगा, आपने क्या मन चंगा तो कठवट में गंगा कहते हैं कि नहीं? ये कौन लोग कहते हैं मालूम है? नादान लोग है, नादान लोग। पहला ये तो प्रश्न है उसको कि तुम्हारा मन चंगा है कि नहीं है? मन चंगा है नहीं यार, कह रहे कि मन चंगा तो कठोट पे गंगा जाने की क्या जरूरत है? तो ऐसी ही ये बात हो गई है, समझ नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका बोध करा देते हैं, परंतु कैसा बोध करा देते हैं? विशेष बोध का मतलब क्या होता है? विशेष बोध का मतलब होता है व्यापक बोध, अपरिच्छिन्न बोध, अविनाशी बोध, अविनाशी आनंद। उस अविनाशी बोध से ही अविनाशी आनंद मिलेगा, वो समाप्त होने वाला नहीं है।